इनाया ने कायरव का नाइट सूट पहना हुआ था, ओवरसाइज टी शर्ट। कायरव की वेल बिल्ट बॉडी और चौड़े कंधों के हिसाब से बनी वो टी शर्ट इनाया के कंधों से नीचे को लुढ़क रही थी। पजामा जो कायरव का फिट आया था वो भी इनाया को ढीला और लंबा आ रहा था, उसने उसे नीचे से फोल्ड किया हुआ था। खुले बाल उसके कंधों और पीठ पर बिखरे थे, बालों को हेयर बैंड से पीछे किया हुआ था। उसका दूध सा गोरा बेदाग चेहरा कशिश बिखेर रहा था। उन ढीले ढाले कपड़ों में वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखते ही कायरव के लब मुस्कुरा उठे, जबकि इनाया ने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा फेरा और बेड की तरफ बढ़ गई। कायरव की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। इनाया के कानों में जैसे ही डोर बंद होने की आवाज पड़ी, उसने तिरछी निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और मुंह बना लिया। बड़ा आया मेरी बातों को बकवास बोलने वाला, खुद तो ऐसे बोलता है जैसे गवर्नमेंट ने इसके बोलने पर स्पेशल टैक्स लगाया हो। हद होती है, हर बात पर इतना अकड़ने की क्या जरूरत है, इंसान प्यार से भी बोल सकता है। लेकिन नहीं, इन महाराज के मुंह से हमेशा अंगारे ही बरसते हैं। इनाया कुछ देर खुद में बड़बड़ाती रही, फिर अपने क्लच में से अपना फोन निकाला और मानव को कॉल लगा दी। कुछ ही रिंग्स के बाद कॉल रिसीव हो गई। टाइम मिल गया तुझे, पता है मैं कब से तेरे कॉल का वेट कर रहा हूँ। पहले तो मैं खुद कॉल करने वाला था, फिर मैंने सोचा कि शायद ये ठीक ना हो, अगर मेरी टाइमिंग गलत हो जाती तो बेवजह ही तू प्रॉब्लम में फंस जाती। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता, वहाँ सब कैसा रहा? मिस्टर रायचंद की फैमिली का बिहेवियर कैसा है तेरे साथ? क्या रिएक्शन था उनका? तू ठीक है ना? मानव की बातों में अपनी परवाह और चिंता महसूस करते हुए इनाया मुस्कुरा उठी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिचुएशन शायद कंट्रोल में है। एक्चुअली पार्टी के बाद कायरव ने मुझे अपने रूम में भेज दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच क्या बात हुई, कैसी सिचुएशन है। लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ लग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे। मेरे साथ उनका बिहेवियर अच्छा हो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन कायरव ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा, तो मैं टेंशन ना लूँ, इसलिए अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। जो होगा देखा जाएगा, तू भी टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। टेंशन तो मुझे तेरी रहेगी ही, वो बड़े लोग हैं, पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और वहाँ तू उनके बीच बिल्कुल अकेली है। अकेली कहाँ हूँ, कायरव है ना मेरे साथ, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे आज किया था। देखा नहीं तूने पार्टी में कैसे उसने सब संभाला था, मैं तो बस उसे देखती ही रह गई थी। इनाया ने तपाक से जवाब दिया और मुस्कुरा दी, पर मानव अब भी काफ़ी परेशान लग रहा था। मैं जानता हूँ कि मिस्टर रायचंद तेरे साथ है, पर वो हर टाइम तो तेरे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए तू थोड़ा अलर्ट रहना और अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगी, तो टेंशन मत ले, इनाया ने कुछ सेकंड रुकते हुए आगे कहा। मनु तू उसे मिस्टर रायचंद मत कहा कर, ऐसा लगता है जैसे किसी बूढ़े आदमी की बात कर रहा है, नाम लेकर बुला जैसे मैं बुलाती हूँ। वो हमसे एज में बड़े हैं और रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है, मेरे जैसे लाखों लोग उनके अंडर काम करते हैं, कितना नाम और इज्जत है उनकी। तू तो अब उनकी वाइफ बन गई है तो जैसे चाहे बात कर सकती है, लेकिन मुझे तो उन्हें रिस्पेक्ट देनी ही होगी, मैं उन्हें नाम से नहीं बुला सकता। क्यों, तुझे किसने कह दिया कि नाम लेने से इज्जत कम हो जाती है? वो कौन सा बाबा आदम के ज़माने का है, हमसे एक दो साल ही बड़ा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कायरव को कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी लोग उसे जो चाहे कहें, लेकिन तू तो मेरा फ्रेंड है ना, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं उसकी वाइफ बन गई हूँ तो तू भी तो उसका ब्रदर इन लॉ है, और वो तेरा जीजू। अब से तो उसे जीजू कहियो, कायरव को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब से तो उसे मिस्टर रायचंद नहीं जीजू कहियो, ओके? इनाया से बातों में जीतना आसान नहीं था, मानव ने उसकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बात करने के बाद इनाया ने कॉल कट किया। ठीक उसी वक्त कायरव ने रूम में कदम रखा और अनायास ही दोनों की निगाहें एक दूसरे की तरफ उठ गई। किससे बात कर रही थी? कायरव का सवाल सुनकर इनाया चौंक गई। इसे कैसे पता चला कि मैं किसी से बात कर रही थी? क्या ये भी कान लगाकर मेरी बातें सुन रहा था? इनाया ने आंखें फैलाकर उसे देखा, फिर अजीब सा मुंह बनाया और सर हिलाते हुए खुद में बड़बड़ाने लगी। नहीं, ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इसकी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता, इसकी एक क्लास है। लेकिन अगर इसने मेरी बातें नहीं सुनी तो इसे कैसे पता चला कि मैं किसी से बात कर रही थी? ये तो अंदर था, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जोर जोर की बता कर रही होंगी कि उसे अंदर तक सुनाई दे। इनाया खुद में उलझ गई, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके कायरव को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी से बात कर रही थी? फोन कान पर लगाकर बैठी हो तो जाहिर सी बात है कि किसी से बात ही कर रही होगी। इनाया चौंक गई, देखा तो सच में वो अब भी फोन कान पर लगाकर बैठी हुई थी। खुद पर खींचते हुए उसने अपने सर पर चपत लगाई और बत्तीसी चमकाते हुए बोली, वो मैं अपने फ्रेंड मानव से बात कर रही थी, उसे मेरी बहुत टेंशन हो रही थी, पर मैंने उसे समझा दिया कि तुम मुझे यहाँ लाए हो तो मुझे प्रोटेक्ट भी करोगे और मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। कायरव ने सर हिलाया और बेड के साइड में लगे नाइट स्टैंड की तरफ बढ़ गया। उसने ड्रॉअर खोला, उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और एक ट्यूब निकालकर अपनी बांह पर लगाने लगा। इनाया बड़ी ही दिलचस्पी से उसे सब करते देख रही थी। वो मेंढक जैसे उछलती हुई बेड के दूसरे कोने से उसके पास आ गई। ये क्या लगा रहे हो तुम? क्रीम है, इससे ये निशान मिट जाएंगे। कायरव ने अपने हाथ को दिखाया। इनाया बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उसे देख रही थी। उसकी गोरी बांह पर बने निशान देखकर उसने तुरंत ही सवाल किया, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुम्हें नहीं पता? कायरव ने निगाहें उठाकर उसे देखा। इनाया ने झट से सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाथ तुम्हारा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये खरोच कैसे लगी तुम्हें। मुझे तो पता ही है, पर जिसने मेरे हाथ का ये हाल किया है पता तो उसे भी होना चाहिए। इनाया कंफ्यूज हो गई। कायरव ने सब रखा और उठकर खड़ा हो गया। चलो तुम आराम से बैठकर सोचो, शायद तुम्हें याद ही आ जाए। मैं तब तक हैंड वॉश करके आता हूँ। कायरव उसे खुद में उलझा छोड़ मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, जबकि इनाया कंफ्यूज सी बैठी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसे वैक्सिंग वाला सीन याद आ गया। उसने चौंकते हुए अपने नाखूनों को देखा। क्या वो मैंने किया था? मैंने ही किया होगा, तभी तो ऐसे बोलकर गया है। लेकिन इसने मुझे पहले तो नहीं बताया। इसके हाथ पर इतने निशान है, मतलब दर्द भी हुआ होगा। लेकिन उस टाइम एक बार भी तो नहीं चिल्लाया था, मुझे रोका भी नहीं था। उसकी जगह मैं होती और कोई ऐसे मेरे हाथ को नोचता तो मैं तो उसके पूरे मुंह से नोच नोच कर खून निकाल देती। लेकिन गलती भी तो उसी की थी, मुझे वहां लेकर वही गया था। जबरदस्ती मेरी वैक्सीन भी उसी ने करवाई थी। मैंने उसके लिए कितना दर्द सहा था, तो बदले में इतना तो डिजर्व करता ही था ये। इनाया खुद से बात करने में एक्सपर्ट थी। अभी भी उसने बातों बातों में सारी उलझन सुलझा ली और अब बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठी फोन चलाने लगी थी। कुछ देर बाद कायरव आया, एक नजर इनाया पर डाली और बैठ के दूसरी तरफ पड़ गया। इनाया ने झट से फोन साइड में रख दिया और कायरव की तरफ मुड़ गई।
मुझे याद आ गया, वैक्सीन के टाइम मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, शायद तभी अनजाने में मैंने तुम्हारे हाथ को नोच लिया। सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी ही थी, तुम ही मुझे वहां लेकर गए थे। मैं तो खुद इतने दर्द में थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, पर तुम्हें तो पता चला होगा ना, उसके बाद भी तुमने मुझे नहीं रोका। तो अब मुझे ब्लेम मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या मैंने कहा कि तुम्हारी गलती है? कायरव ने नजरें घुमाकर उसे देखा। इनाया ने झट से इनकार में सर हिला दिया। जब मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, तुम्हें ब्लेम नहीं किया, तो तुम जस्टिफिकेशंस क्यों दे रही हो? कायरव ने भौं उछाली। इनाया कुछ सेकंड हैरान परेशान सी उसे देखती रही, फिर तुनकते हुए बोली, मैंने बस अपना पॉइंट क्लियर किया है ताकि फ्यूचर में तुम मुझे ब्लेम ना कर सको। गुड, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे बता दिया कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। रात बहुत हो गई है, तुम थक भी गई होगी, तो अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कायरव को लेटते देखकर इनाया भी लेट गई। दोनों बेड के दो कोनों पर लेटे थे। कायरव की पीठ इनाया की तरफ थी और इनाया टुकुर टुकुर उसे ही देखे जा रही थी। कायरव ने अचानक करवट बदली। इनाया बुरी तरह घबरा गई। हड़बड़ी में वो भी पलटने लगी और चीखते हुए सीधे बेड से नीचे जा गिरी। आवाज इतनी तेज थी कि कायरव हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। टू बी कंटिन्यूड। अब तक की स्टोरी कैसी लगी आपको, सच सच बताइए, पसंद आ रही है या नहीं?